أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي ويستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو کل ہم نے احکام حجاب پڑھنے شروع کیے تھے، تو اس کے تحت ساجد نے آپ کو ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی بھیجی، امید ہے کہ آپ لوگوں نے سننی ہوگی. جیسا کہ اس ریکارڈنگ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کسی ویسٹرن کنٹری میں ریکارڈ کی گئی ہے، اور موسٹ لائکلی جہاں تک میرا اندازہ یا اطلاع سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کینیڈا کی بات ہے. اور الہدا فاؤنڈیشن کا بھی اس کے اندر ذکر ہے، یعنی یہ جو ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی کی بنائی ہوئی جو فاؤنڈیشن ہے، تو اسی کے ہی یہ لوگ ہیں اور اسی میں ہی جو ہے نا یہ اسکول وغیرہ آرگنائز ہوا جس کو سمر اسکول کہتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ، جیسے کہ کل بات ہوئی تھی نا کہ جن میں سے جنہوں نے مغرب کو، مغربی تہذیب کو اور کافروں کے طریقوں کو اپنا خدا بنا کے رکھا ہے اور انہیں کی تقلید کرنے کے اوپر ہم مصر ہیں، تو ان کا ایک علاج یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے جو یہ خدا ہیں تو ان کے جو نقص ہیں نا ان کو کھول کے سامنے بیان کیا جائے کہ دیکھو تم جس معاشرے کو اتنا اچھا سمجھتے ہو تو اس معاشرے کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ یہ جو خاص ایک بیک گراؤنڈ تھا جس کو کہ آپ کے ساتھ کل شیئر کیا ہے، اس کے اندر ایک اور پہلو تھا. وہ پہلو جو تھا نا وہ تھوڑا سا یعنی مغربی معاشرے والا پہلو خالی نہیں تھا، اس کے اندر ایک زیادہ اہم میسج یہ تھا کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ دیندار ہیں. ٹھیک ہے، الہدا فاؤنڈیشن کے جو پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں یہ دیندار لوگ ہوتے ہیں، رائٹ، یہ بے دین بد دین قسم کے لوگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن یہ فقط اس طرح کی دینداری جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی انسان کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور انسان کی اولادوں کی حفاظت کے لیے. جیسا کہ آپ کو اس کو سن کر کے اندازہ ہوگا کہ یہ وہ بچے ہیں جو کہ اسلامک اسکولز میں جاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، 80% اسٹوڈنٹس اسلامک اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے، باقی 20% جو ہے وہ اسلامک اسکول اگر نہیں بھی جاتے پھر بھی پیرنٹس دیندار ہیں، جب بھی تو بچوں کو ان پروگرامز میں بھیج رہے ہیں، سنڈے اسکول میں بھیج رہے ہیں، الہدا کے اندر شامل ہو رہے ہیں، رائٹ، دیندار تو ہے نا، رائٹ. لیکن اس کے باوجود گھروں میں ٹیلی ویژن ہے. ٹھیک ہے، بچے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، صحیح ہے، تو اس سے نہیں روکا ہوا ہے بچوں کو، یا اپنے گھروں کو ٹی وی سے پاک نہیں کیا ہے. بڑے بھی دیکھتے ہوں گے، بچے بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بڑے جو ہیں وہ سیل فون کے اوپر اپنا بہت زیادہ وقت بھی گزارتے ہیں. جیسے کہ اس لڑکے نے بیان کیا کہ جی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، 2 گھنٹے ٹوٹل نکلے جو کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دیے تھے، یعنی ان بچوں کو ٹوٹل آورز ملے ہیں نا ماں باپ سے کمیونیکیشن کے لیے، وہ 2 گھنٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو دین ہوتا ہے نا، جس دین کے اندر اپنی خواہشات غالب ہوتی ہیں، اپنی نفس پرستی غالب ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین پر چلنے کا بھی شوق ہوتا ہے یا دین پر بھی چلنا چاہتے ہیں، یہ دین جو ہوتا ہے نا یہ انتہائی بودہ دین ہوتا ہے، انتہائی کمزور دین ہوتا ہے. یہ دین ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ گناہوں سے حفاظت کرنے کے لیے دین کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، माहौल जितना खराब होगा तो उसके असरात जो है वो इस दीन के ऊपर बहुत इमीडिएटली होते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ वर्शिप वाला और मस्जिद में बस आने जाना कर लेना, लेक्चर अटेंड कर लेना, ठीक है, इतना काफी नहीं होता दीन के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, खुसूसन इस दौर के अंदर जबकि फितने जो है वो अपने उरूज पर है और आप इनसे अपने आप को अपनी औलादों को बचा नहीं सकते कि ये आपको टच ना करें, आपका एक्सपोजर ना हो उनसे, ऐसे नहीं, आप बचा नहीं सकते अपने आप को। ठीक है, तो इनको जाहिरी यानी अपने आप को जाहिरी तौर पर नहीं बचा सकते, तो अपने आप को बातनी तौर पर बचा सकते हैं। बातनी तौर पर बचाना यानी अपने दिल को महफूज रखना, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस नियत के साथ आपके साथ उसको शेयर किया है और उसी बात को साजिद ने कुछ ढके छुपे अल्फाज में उस मैसेज के अंदर समझाने की भी कोशिश करी है कि जी दूसरी तीसरी प्रायोरिटी नहीं चलेगी दीन के साथ, बल्कि पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इसको। और जैसा कि दीन नबी अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे ना, फर्स्ट प्रायोरिटी भी थी और के सुन्नत तरीका जो कि नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत के साथ दीन आया था। ठीक है, ये कोई थ्योरेटिकल मैसेज नहीं था जो कि किताबों की शक्ल में आ गया था या ऑडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में आ गया था। ठीक है, ये कोई थ्योरेटिकल मैसेज नहीं था, ये एक प्रैक्टिकल मैसेज था, ये ह्यूमन इंटरेक्शंस के जरिए से चलता था। ठीक है, तो ये जो दीन होता है, जाहिर है अलहुदा का दीन, आप लोगों को पता है कि ये अहले हदीस मतलब फिक्र के लोग होते हैं, जिसको सलफी भी कह देते हैं आज के दौर के अंदर। तो इनके यहाँ तो तसव्वुफ को नऊज बिल्ला शिर्क और बिदत समझा जाता है। तो शेख के साथ जो इस्लाही ताल्लुक होता है और शेख से सीख करके जिक्र करने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इसको तो बहुत बुरा समझा जाता है। ठीक है ना, तो अब इस तरीके से जो दीन पे चलेंगे कि जिसमें जिक्र को भी बुरा समझा जा रहा है, शेख से सीखा वाला जिक्र उसको भी बुरा समझा जा रहा है, शेख के साथ जो इस्लाही ताल्लुक होता है उसको भी बुरा समझा जा रहा है, अपने अकाबरीन के साथ जो बरकत वाला एक रिलेशनशिप होता है उनकी सोहबत में रहने वाला, राइट, उसको भी बुरा समझा जा रहा है। तो अब दीन में क्या बच गया, क्या बच गया दीन के अंदर? बस वही जाहिरी इबादतें, लेक्चर लेक्चर सुन लिया और जो है वो अपने जाहिरी इबादतें कर ली। तो इससे शैतान के धोखे से इंसान महफूज नहीं रह सकता इन इन इनके जरिए से। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लासों में बात हो चुकी है कि जिसका शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है। ठीक है, क्योंकि शेख ने तो शैतान के धोखों से बचाने के लिए इंसान को उसका आईना दिखाना होता है, लेकिन जिसका शेख नहीं होता, ठीक है, यानी शेख नहीं होना का मतलब क्या है कि जो जिसका कि मशवरे वाला ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, गाइडेंस नहीं ले रहा होता किसी शेख से, तो उसको फिर गाइड कौन कर रहा होता है? शैतान गाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो फिर शैतान जो है ना वो इबादतों को चालू भी रखता है कि चल करते रहो इबादतें, लेकिन साथ साथ गुनाहों को भी चालू करके रखता है इंसान की जिंदगी के अंदर। बहरहाल, दूसरी चीज ये थी कि जैसे कल यही बात हुई थी कि इनके खुदाओं के जो खराबियां हैं ना, उन खराबियों को सामने लाना पड़ता है। तो आपको याद होगा कि सूरह नूर की जो तफसीर का प्रोग्राम हुआ था, दरसे तफसीर सूरह नूर रमजान मुबारक के अंदर, तो इस आरिज ने उस वक्त एक यूएस गवर्नमेंट की पब्लिश्ड रिपोर्ट का तस्करा किया था क्लास के अंदर। ठीक है, वो प्रेसिडेंट ओबामा साहब जब होते थे अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने 2014 में ये एक स्टडी स्टार्ट करवाई थी वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में, अपने व्हाइट हाउस के अंदर, और उस स्टडी की रिपोर्ट जो है वो पब्लिश्ड है और इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। उसका नाम है रेप एंड सेक्सुअल सेक्सुअल असॉल्ट रिपोर्ट, रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट रिपोर्ट। ठीक है ना, वो रिपोर्ट जो है ना वो हमें भी पढ़नी चाहिए कि इनके यहाँ जो जो बड़े यानी फखर से कहते हैं कि हमारा मुआशरा बड़ा आजाद मुआशरा है और हर एक जो है वो बड़े आराम से रहता है, सुकून से रहता है, और हम भी जो है वो पागल दीवाने हुए चले जा रहे होते हैं उनके पीछे। तो इन्होंने इस रिपोर्ट में खुद लिख दिया है कि इनके यहाँ क्या हालात है, इस जो बेराह रवि और ओपननेस के जो नतीजा है ना, वो नतीज कितने भयानक है, कितने खौफनाक नतीज है, कि जिससे कि ये अगर इनमें से कुछ लोग संजीदा होकर थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए संजीदा होते हैं, ज्यादा ये लोग संजीदा नहीं होते, थोड़ी देर के लिए संजीदा होकर के अगर कोई रिसर्च करते हैं ना, तो खुद जो है वो परेशान हो जाता है कि क्या हमने क्या कर दिया है अपने मुआशरे में, या क्या हो गया हमारे मुआशरे को। ठीक है ना, जैसे कि उसकी चंद बातें ऐसी थी कि जी के 5 में से हर एक औरत जो होती है वो अपनी जिंदगी में एक दफा कम से कम रेप हुई है। ठीक है, तो 5 में से 1 औरत कम से कम, और यानी बड़ी सारे मैं उस क्लास के अंदर बयान कर भी चुका हूँ। तो इस तरह की चीजों को हमें भी ना अपनी स्टडी में रखना होगा, दिस इज पार्ट ऑफ आवर दावा। बाकी ये कि जो हमारा मौजू चल रहा था कल, वो यानी गुनाह के असबाब के मुताबिक चल रहा था कि इस शरीयत ने नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ गुनाह को हराम नहीं किया या गुनाह को नाजायज नहीं किया, बल्कि जो गुनाह के मुकदमात होते हैं यानी जो असबाब गुनाह तक ले जाने होते हैं, ले जाने वाले होते हैं, तो उनको भी मना किया। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी तफसील है, क्योंकि असबाब का जो सिलसिला है वो तो एक अनलिमिटेड, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड सिलसिला है। ठीक है, तो ये फरमाया था कि असबाबो जराए का करीब और बईद एक एक तवील सिलसिला है। अगर आप सबको मना कर देंगे ना, तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। फिर तो घर के चार दीवारी के अंदर या एक कमरे के अंदर जो है वो बस लॉक करके आप अपनी सारी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप कहीं आप कुछ भी ना करें। ठीक है ना, तो अगर सबको मना कर दिया तो फिर तो जिंदगी ऐसी होगी, बल्कि वो भी शायद नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसके अंदर बहुत सारी तफसील है, और तफसील फिर इन्होंने तीन दर्जों में करके हमें समझाई थी कि असबाब करीबा होते हैं तो उनको तो शरीयत ने ऐसे ही हराम करार दिया, जैसे कि जो गुना असल गुना होता है उसको हराम करार दिया। ठीक है, इसलिए कि इन असबाब में अगर कोई पड़ गया तो उसने गुनाह करना ही है। तो वो दूसरा दर्जा था असबाब बईदा, यानी जिनके करने से जरूरी नहीं है कि गुनाह करे, लेकिन बहुत यानी ज्यादा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है गुनाह करने की। ठीक है, जैसे अंगूर आप किसी ऐसे शख्स को बेचें जिसके बारे में आपको पता है कि वो अंगूर से शराब बनाता है, तो अब मुमकिन है कि वो अंगूर खाने के लिए खरीद रहा है या अंगूर किसी दूसरे को तोहफा देने के लिए खरीद रहा है, लेकिन चूंकि वो खुद शराब बनाने वाला है तो ज्यादा लाइकलीहुड ये है कि वो इस अंगूर को शराब बनाने के लिए खरीद रहा है, तो उसको भी बेचना जो है वो शरीयत ने मकरूह और नाजायज करार दिया। ठीक है, बल्कि मकरूह तहरीमी और नाजायज करार दिया। ठीक है, तीसरा दर्जा था आम लोगों के हाथ अंगूर बेचे जाएं, लेकिन हर बंदा अंगूर खरीद करके शराब बना सकता है। ठीक है, ये जो शराब पर पाबंदी वाला इशू है ना, ये जरा डिफरेंट टाइप ऑफ इशू है। ठीक है, शराब पर पाबंदी के बारे में हमारे मुल्क में भी बड़ी बातें जो रिसेंटली भी बहुत हुई हैं, तो ये जो है ना, ये एक एक यानी एक फॉर्मल तरीके से शराब की खरीदो फरोख्त मुल्क में होना, इसके ऊपर पाबंदी की बात हो रही है। ठीक है, वरना हकीकत यह है कि शराब के ऊपर पाबंदी, ऐसा कि शराब मुल्क में हो ही ना, ये मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? इसलिए कि अंगूर पर तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते ना, राइट? आप जो है वो यानी दूसरे भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे शराब बन सकती है, आप उन चीजों पर तो पाबंदी नहीं लगा सकते। तो कोई शख्स अपने घर में बड़ी आसानी से शराब बना सकता है। ठीक है ना, हत्ता कि आप खजूर को, राइट, क्या होता है वो खजूर को जो पानी में डाल करके अपने नबी अलैहिस्सलाम सुबह को पिया करते थे। ठीक है, तो उस हदीस के अंदर क्या है कि जी जब खजूर को आप पानी में डाल करके छोड़ दें तो अगर उसके अंदर जोश पैदा हो जाए तो फिर ना पिए उसको, फिर उसको फेंक दें। भाई क्यों? जोश पैदा होने के ऊपर क्यों फेंक दें? इसलिए कि जोश पैदा होने से वो शराब बन जाती है। ठीक है, तो शराब बनाना तो इतना आसान काम है। ठीक है, कि बस आप किसी चीज को डालें और फिर वो शराब बन जाएगी, थोड़ी यानी 24 घंटे अगर गुजर जाए उसको पानी के अंदर, शराब बन जाएगी। तो शराब पे कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो फिर वो पाबंदी जिसकी उलमाए कराम बात करते हैं, वो ये वाली पाबंदी नहीं है कि जी शराब खत्म हो जाए मुल्क से, नहीं, बल्कि उसकी जो खरीदो फरोख्त है और जो अशात है और उसके ऊपर जो यानी खुले आम जो है वो शराब पीना, इनके ऊपर पाबंदी की बात है। बहरहाल उसके अंदर जाहिर उलमा ही तफसील बता सकते हैं मजीद। बाकी ये तंबीह है जरूरी, ये हम आज पढ़ रहे हैं कि यहाँ ये बात जरूरी याद रखना जरूरी है कि शरीयत इस्लाम ने जिन कामों को गुनाह का सबब करीब दर्जे अव्वल का करार देकर हराम कर दिया, इस हुक्म हुरमत के बाद वो सब के लिए मुतलकन हराम है, ख्वाह इब्तिलाए गुनाह का सबब बने या ना बने। अब वो खुद एक हुक्म शर्मी शरी बन जाता है जिसकी मुखालफत हराम है। ठीक है, यानी जो दर्ज अव्वल के शरीयत ने, शरीयत से मुराद किया या तो नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया है या ये कि जो उलमाए उम्मत हैं उन्होंने अपने इजमाए कती के जरिए से, यानी इजमाए कती है जो कि यानी इस बात पर मुत्तफिक है कि ये चीज हराम है। ठीक है, तो ये खुद एक शरी हुक्म बन गया, नहीं यानी एक माखज से ही शरीयत के जो चार माखज होते हैं, तो उनमें से एक माखज के जरिए से ये शरीय हुक्म डिफाइन हो गया। इस तमहीद के बाद ये समझिए कि औरतों का पर्दा भी शरअन इसी सद्दे जराए के उसूल पर मबनी है, कि तर्क पर्दा सबब है मासियत में मुब्तला होने का। इसमें भी असबाब की मजकूरा किस्मों के अहकाम जारी होंगे। मसलन किसी जवान मर्द के सामने जवान औरत को अपना बदन खोलना इब्तिलाए गुनाह का ऐसा सबब करीब है कि आदत अक्सरिया के एतबार से इस पर गुनाह का मुरतब होना लाजमी है। ठीक है, आदत अक्सरिया यानी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के जो अल्लाह ताला ने मिजाज बनाया है, तो उसके मुताबिक जो है ना, इस फेल के बाद फिर अब गुनाह से नहीं बंदा रुक सकता। इसलिए ये तो शरअन जिना की तरह हराम हो गया, क्योंकि शरअन इस हुक्म को हुक्म फाहिशा का, इस अमल को हुक्म फाहिशा का दे दिया गया है। ठीक है, जिसको फहाशी कहा जाता है हमारी उर्दू जुबान के अंदर। तो अब वो मुतलकन हराम है। ठीक है, अब कोई ये नहीं कह सकता कि जी किसी जवान औरत की जो ऐसी शक्ल है, तस्वीरें जो हैं वो अगर बिलबोर्ड के ऊपर लगी हुई हैं तो ये कोई जिना तो नहीं है। ठीक है भाई, ये जो है ना वो असबाब करीबा में से इस तरह की चीज बन जाती है, तो इसको जो है वो फवाहिश के अंदर शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब ये मुतलकन हराम हो गई है। अगरचे मामला अब ये बता रहे हैं कि जी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई मासूम के साथ ऐसा मामला हो। मासूम कौन होता है कि जो कि गुनाह नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ऐसा शख्स हो अगर उसके साथ मामला हो, या कोई ऐसा शख्स हो कि अपने नफ्स पर मुकम्मल काबू रखने की वजह से मुतमईन होकर गुनाह से बच जाए, यानी कोई ऐसा नौजवान हो कि जो कि बिल्कुल जो है ना वो उसने इतने मुजाहिदे किए हैं कि अब उसके लिए जो है वो औरत और दीवार के दरमियान कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो औरत और दीवार के दरमियान उसके लिए कोई फर्क नहीं रह गया, लेकिन क्या उसके लिए ये बात जायज हो जाएगी कि किसी गैर महरम औरत, गैर महरम तो क्या, बीवी के अलावा कोई औरत हो जिसके के साथ जो है वो यानी बेलिबासी की हालत में मौजूद हो सके, ये उसके लिए जायज हो जाएगा? नहीं, ये उसके लिए भी जायज नहीं होगा। ठीक है, मवाक़े जरूरत इलाज वगैरह का मुस्तस्ना होना अलग चीज है। ठीक है, मौके जरूरत ये शरीयत ने जो जैसे जैसे डिफाइन किया है, तो उसके मुताबिक जो है ना, कि जैसे कि कल बात हो चुकी है कि इलाज के लिए शरीयत ने बदन खोलना जहां जरूरत है इलाज के, ठीक है ना, उसको शरीयत ने मुस्तस्ना करार दिया है, तो ये एक अलग डिस्कशन है। यहाँ पर जो बात हो रही है ये उस मौके जरूरत की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो इससे असल हुर्मत पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि शरीयत ने चूंकि इलाज के लिए ये एग्जेम्प्ट किया है तो अब नॉर्मल हालात के अंदर भी ये एग्जेम्प्ट है, ये नहीं कहा जा सकता। ये मसला औकात और हालात से भी मुतासिर नहीं होता कि पहली सदी हिजरी के अंदर जो है वो बड़े नेक लोग थे तो उस वजह से पाबंदी नहीं थी, और 21वीं सदी के अंदर जो नेक लोग हैं यानी 21वीं सदी के हालात इतने खराब हो गए तो अब पाबंदी लग गई है इसमें। नहीं, ये पाबंदी जो है वो करने अव्वल इस्लाम में भी इसका हुक्म वही था जो आज फिस्को फुजूर के जमाने में है, यानी जब फिस्को फुजूर आज के जमाने में बहुत कसरत से फैल गया है, तो अभी भी यही हुक्म है और उस वक्त भी यही हुक्म था जबकि फिस्को फुजूर की कसरत नहीं थी। अगरचे के इंडिविजुअल से गुनाह उस जमाने में भी हो जाते थे लेकिन कसरत नहीं थी उस जमाने में, ये सोशल मीडिया और इंटरनेट ये सारी चीजें नहीं थी। आज के जमाने में जो कसरत हो गई है ना, ये यानी इन चीजों की वजह से ये कसरत बहुत ज्यादा हो गई है। कल जो डॉक्टर वाला मसला था उसके बारे में किसी को कोई इश्काल है? इसलिए कि आई फील के एक तो ये जरा कॉम्प्लेक्स मसला है। ठीक है कि भाई बच्चियों को पढ़ाना ये एक अलग टॉपिक है और फीमेल डॉक्टर तलाश करना ये एक अलग टॉपिक है, ये इतना आसानी से समझ में नहीं आता। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने जिस अंदाज में आप लोगों को समझाया था या समझाने की कोशिश करी थी, तो वो भी कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छा अंदाज था, आप लोगों के समझ में आ भी गया हो। तो इस वजह से अगर कोई इश्काल है ना इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये तालीम वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। ठीक है ना, ये एक ऐसा मामला है कि जैसे कि तकरीबन ऐसा मामला नहीं कहेंगे, लेकिन तकरीबन ये ऐसा मामला है कि जैसे कि अभी पिछले जो हमने आयात पढ़ी है कि मुंह बोले बेटे के की जो मुतल्लका है उससे शादी कर लेना, ठीक है ना, ये कितना बड़ा मसला था नबी अलैहि सलाम के, ठीक है ना, कितना बड़ा मसला था, क्योंकि ये उस दौर के मुआशरे के अंदर रच बस गया था। यानी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जिसको के यानी करने के लिए सिर्फ कुरान के अल्फाज भी काफी नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का बनाने के ऊपर, राइट, बना यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बगैर ये मसला हल नहीं हुआ, ठीक है, और अपने नबी अलैहिस्सलाम को काफी ज्यादा जो है ना ये यानी आपने तफसीलात पढ़ी भी थी, हमने बहुत डिस्कस भी किया था, उसको सुना भी था इस बात को ना, कितना मुश्किल यानी एक सिचुएशन थी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये उस मुआशरे का नेचर बन चुकी थी है। इस तरीके से सोचना, इस तरीके से फील करना अपने मुंह बोले बेटे की बीवी के बारे में, राइट, कि वो तो बेटी है मेरी, वो तो मेरी बहू है, बहू बेटियां एक ही तरीके से होती है, ठीक है, बिल्कुल वही तकरीबन तकरीबन ऐसा ही मसला जो है ना आजकल के तालीमी निजाम का बन चुका है, ठीक है, ये जो हम जैसे लोग हैं जो कि सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम से पल करके बड़े हुए हैं और उसी में हमारे सारा खानदान भी यानी एजुकेट हुआ है और उसी के अंदर जो है वो हम अपने औलादों को भी भेजते हैं, ठीक है ना, तो इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ बात करना, इस एजुकेशन से अपने आप को बचाना, ये भी बहुत मुश्किल काम बन गया, और खुसूसन इस मामले में औरतों और मर्दों की तफरीक करना, लड़के और लड़कियों की तफरीक करना, दोनों के दरमियान एक फर्क करना, ये मुआशरे के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ बात है, ठीक है, तो इस वजह से इसको समझना और समझाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये पूरी कौम का मिजाज बनाता है, पूरी कौम का सोच जो है ना वो इस एजुकेशन सिस्टम के जरिए से बन जाता है, तो ये बहुत आसान रास्ता है किसी के लिए किसी कौम के मिजाज को तब्दील करने के लिए, ठीक है, तो इस वजह से इसको अनएड्रेस्ड छोड़ना भी सही नहीं, ठीक है, भाई छोड़ दो, कोई अल्लाह मालिक है इस तरह से बोल करके बस छोड़ दो, अल्लाह तो मालिक हर चीज का है, इस चीज को क्यों छोड़ दो भाई, अल्लाह मालिक है कह करके, बाकी चीजों को क्यों नहीं छोड़ देते, सबको ही छोड़ दो फिर, अल्लाह मालिक है, ठीक है, तो ये अहम भी है इस वजह से, तो अगर कोई इश्काल हो किसी के जहन में तो प्लीज उसको क्लियर कर लें। आगे फरमाया कि दूसरा दर्जा तर्क हिजाब का ये है कि घरों की चार दीवारी से बाहर निकलकर बुरका या लंबी चादर से पूरा बदन छुपा कर बाहर निकले। क्या ये हमेशा से मुस्लिम मुआशरे में नहीं था? क्या चीज नहीं थी? औरतों का डॉक्टर बनना, इसकी बात वाले में कह रहे हैं, औरतों का इस एजुकेशन सिस्टम के तहत इल्म हासिल करना, ये एजुकेशन सिस्टम जो है ये पहले था ही नहीं, ठीक है, जिसके अंदर के पहली बात तो ये कि मखलूत निजामे तालीम, ठीक है, दूसरा ये कि ये जो करिकुलम है एजुकेशन सिस्टम इज कंप्राइज ऑफ टू मेन थिंग्स, एक होता है करिकुलम यानी जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, दूसरे होते हैं टीचर्स, ये टीचर और बुक्स मिल करके एक एजुकेशन सिस्टम बनता है, ठीक है, दीन का एजुकेशन सिस्टम भी टीचर प्लस बुक्स, राइट, उसी तरह दुनिया का एजुकेशन सिस्टम भी टीचर प्लस बुक्स, ये जो एजुकेशन सिस्टम जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं ना सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम या वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, ये तो मुस्लिम मुआशरे के अंदर जब कॉलोनियल पावर्स ने गलबा कर लिया, काबू पा लिया तक पूरा का पूरा, तब उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उनके लोगों ने बकायदा जैसे लॉर्ड मैकॉले का आपने नाम सुना होगा, उस जैसे अपने इंटेलेक्चुअल्स को उन्होंने बकायदा ये टास्क असाइन किया कि जी ब्रिटिश इंडिया के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाओ, अब वो सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के लिए नहीं था एक्चुअली, बिकॉज ये जो ब्रिटिश पावर्स थी, ब्रिटिश निजाम जो था वो अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज में था, वो जो है वो ये जो अरब कंट्रीज है उनमें भी था। जहां ब्रिटिश नहीं था वहां पर फ्रेंच था, जहां पर फ्रेंच और ब्रिटिश नहीं था वहां पर डच सिस्टम था, ठीक है। तो ये उस उन लोगों का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम है, तो इसके अंदर जो है ना यानी बिल्कुल ही इंसानों का मिजाज जो है वो एंटी रिलीजियस बनाने के ऊपर जोर होता है, ठीक है। तो जब एजुकेशन सिस्टम ही नहीं था तो फिर हमारी औरतें इस एजुकेशन सिस्टम में कैसे पढ़ती थी। वो पहले जो है जो जो एजुकेशन सिस्टम होता था वो तो दीनी कुतुब और दीनी उलमाए कराम वो टीचर्स होते थे, ठीक। तो अच्छा, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये कोई हमारी नस्ल ने नहीं पढ़ा है या हमारे वालदैन ने खाली नहीं पढ़ा है, ये एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुए हुए 4-5 जनरेशन गुजर चुकी हैं, ठीक है ना। 4-5 जनरेशन यानी हमारी जनरेशन, बल्कि हमारे दादा नानी की जनरेशन और उनके पेरेंट्स के जमाने में एजुकेशन सिस्टम आ चुका था। आपको मैंने कुछ दिन पहले भेजी भी थी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के जो सफात भेजे थे, तो वो बिल्कुल इसी अंदाज में अपने दौर के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो उनका दौर कौन सा दौर था? आज से कोई 100 साल पहले का तो दौर था ना वो, जब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी अपना काम कर रहे थे, तो उस वक्त ऑलरेडी जो है वो मुसलमान औरतें जो है इस इन कॉलेज स्कूल्स के अंदर जाना शुरू हो चुकी है। ये जो आप देखते हैं ना कायदे आजम की, तो खैर वो तो चलो जी बोहरी मुस्लिम थे और वो तो वैसे भी जरा यानी डिफरेंट टाइप ऑफ दीन था, उन्होंने तो बाद में तौबा करी थी, बाद में जाकर के सुन्नी मुसलमान हुए थे। लेकिन बाकी जो लोग थे ये लियाकत अली खान, ये तो नॉर्मल सुन्नी सुन्नी मुसलमान थे। तो लियाकत अली खान की जो बेगम थी, ये बेगम किस एजुकेशन, ये बहुत यानी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी खवातीन थी, लेकिन यहां से उन्होंने पढ़ा लिखा था, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा लिखा था इन लोगों ने। इन लोगों को तो गुजरे हुए भी 70 साल गुजर चुके हैं ना। तो ये जो है ये सबब बईद है फितने का, ठीक है, बाहर निकलना लेकिन छुपा, क्योंकि निकलने के बाद जब निकल गई और माशाल्लाह अब तो ड्राइवर भी बन गई है, ठीक है, यहाँ पर वहां हमारे यहाँ तो पहले से ड्राइवर थे, यहाँ पर तो ड्राइवर भी बन गई है, तो अब इवन ड्राइवर से छुपने का खौफ नहीं है कि भाई ड्राइवर को पता लगे कि मैं किधर जा रही हूँ, अब तो खुद ही ड्राइव करके जहाँ जाना चाहे जा सकती हैं। तो ये जो है वो सबब बईद है फितने का। इसका हुक्म ये है कि अगर ऐसा करना सबब फितना हो तो नाजायज है, कल ये बात हो चुकी है, और जहां फितने का खौफ ना हो वहां जायज है। इसीलिए इसका हुक्म जमाने और हालात के बदलने से बदल सकता है, ठीक है। कभी फितने का जमाना हो तो वहां पर फिर इसको इसके ऊपर उलमा फिर अलग हुक्म लगाएंगे, और जहां फितने का जमाना ना हो वहां पर इसका हुक्म अलग हो जाएगा, लेकिन कौन लगाएगा? उलमाए कराम लगाएंगे। हाजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस तरह का औरतों का खुरूज मूजिबे फितना नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बुर्का वगैरह में सारा बदन छुपाकर मस्जिदों में आने की चंद शराइत के साथ इजाजत दी थी और उनको मस्जिद में आने से रोकने को मना फरमाया था। नबी अलैहि सलाम की जात मुबारक जब मौजूद थी, ये बिल्कुल उस वक्त की बात हो रही है, अगरचे उस वक्त भी उनको तरगीब इसी की दी थी कि नमाज अपने घरों में अदा करें, क्योंकि उनके लिए मस्जिदों में आने से ज्यादा सवाब घर में पढ़ने का है, मगर फितने का खौफ ना होने के सबब मना नहीं फरमाया था, ठीक है। तो मुसलमान औरतों को तरगीब दी थी, नबी अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया था। अगर मना कर देते ना तो सहाबा कराम की खसूसियत क्या है, जो कल परसों बात हुई है कि उनका भी एक नॉर्मल मुआशरा था, हमारा जैसा मुआशरा था, लेकिन हमें मना करने से हम रुकते नहीं है, उनको मना करने से वो रुक जाते थे, ठीक है। तो खवातीन फौरन रुक जाती अगर मना कर दिया गया होता उस वक्त, ठीक है। लेकिन मना नहीं किया गया, उसकी मना ना करने की वजह क्या थी, ठीक है। मना ना करने की वजह ये थी कि एक तो फितना था कम, हर कोई जो है ना वो बहुत रिलेटिवली स्पीकिंग यानी दूसरे दौरों के मुकाबले में लोग जो थे ना वो कंट्रोल में रहते थे, ठीक है। نبی علیہ السلام کی موجودگی کی کے اثرات ہی ایسے تھے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو عورتیں مسجد میں پھر بھی آتی تھی نا, وہ آتی تھیں نبی علیہ السلام کی وجہ سے, ٹھیک ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام وہاں موجود ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے تھے, اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ امت کے روحانی باپ بھی تھے, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ پردے کا تو معاملہ تھا بھی نہیں, اگرچہ کہ نبی علیہ السلام پردہ آبزرو کرتے تھے, لیکن اس طرح سے ایک جو یعنی اجتماعی شکل کے اندر کہ بھئی نہیں نبی علیہ السلام سے دور رہنا ہے, نبی علیہ السلام کو دیکھنا نہیں ہے, ایسا معاملہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا نا. تو صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کے لیے آتی تھی, ٹھیک ہے نا. اگر اس سلسلے کو بند کر دیا جاتا نا, تو ظاہر صحابیات میں بھی ایسی تھیں جو کہ شدید محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار تھے, شدید محبت رسول, تو ان کے دلوں کے لیے نا یہ بات بہت مشکل ہو جاتی, ٹھیک ہے نا, وہ برداشت نہیں کر پاتی کہ جی نبی علیہ السلام سے ہمیں یعنی بالکل ہی ہمیں روک دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ٹھیک ہے. لیکن جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہ جو کاز تھا, یہ ریزن تھا, ختم ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ساری چیزیں تو پائی تھیں, ٹھیک ہے, ساری جو فضا جو جو نعمتیں اور ساری جو جو روحانی کیفیات وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پائی تھیں, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے نا, ان کے ساتھ باقی صحابہ کا ویسا محبت والا رشتہ نہیں تھا جیسے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے اور صحابہ نے اپنی ساری محبتیں وہ نبی علیہ السلام سے ہٹا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر دے دی, نہیں ایسا نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھنے والا معاملہ نہیں تھا کہ جی ان کو نہیں دیکھیں گے تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی, ان کی بات نہیں سنیں گے تو ہماری زندگی کیسی گزرے گی, نہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو صحابہ اور صحابیات تھے نا, تو ان کے لیے اب وہ والی سچویشن ختم ہو گئی تھی کہ نبی علیہ السلام تو اب مسجد میں موجود ہیں نہیں, ٹھیک ہے. سید احمد کی تحریک اور علی گڑھ انہی یونیورسٹی کا بننا, اس بارے میں علماء حضرات کیا فرماتے ہیں؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, علی گڑھ کے بارے میں جو ہم نے کئی علماء سے سنا نا, تو ان کے اوپینین جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور سر سید احمد خان کے, کہ انہوں نے یعنی یہی کہا کہ جی ان کا جو تھا وہ یعنی تھے تو یہ خیر خواہ, ٹھیک ہے, تھے تو یہ نا مسلمانوں کی جو حالات ہیں ان سے پریشان, یہ کوئی برٹش ایجنٹ نہیں تھے. یعنی جن علماء نے ان پر تنقید کری ہے نا, انہوں نے بھی ان کو برٹش ایجنٹ نہیں کہا, جیسے یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی, اس کو تو برٹش ایجنٹ کہا ہے نا صاف, کہ یہ تو انگریزوں کا بنایا ہوا تھا اور انگریزوں سے یعنی سب کچھ اس کو ملتا تھا, مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے آیا تھا. یہ بات سر سید احمد خان کے بارے میں کسی نے نہیں کہی, حتیٰ کہ مولانا مودودی جن سے کتنا اختلاف ہے علماء کا, ایون مودودی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی علماء نے کہ وہ برٹش ایجنٹ تھے یا کافروں کے ایجنٹ تھے اور وہ مسلمانوں میں تفریق لانے کے لیے آئے تھے, نہیں تھے یہ دونوں خیر خواہ مسلمانوں کے اور مسلمانوں کی حالات سے پریشان تھے, لیکن انہوں نے جو طریقہ استعمال کیا تھا نا, اس طریقے کے اوپر علماء کرام متفق نہیں تھے, ٹھیک ہے. یہ جو تھوڑا سا ایک یعنی ماڈرن سٹائل جو سٹارٹ کیا تھا مولانا مودودی نے, پردے وغیرہ کے خلاف بات نہیں سٹائل کیا تھا, ان کے افکار ذرا ڈیفرنٹ قسم کے تھے, صحابہ کرام کے اوپر تنقید کر دینا اور انبیاء پر تنقید کر دینا اور علماء اور مشائخ اور تصوف کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا, ٹھیک ہے. تو ان کے یہ مسئلے تھے. ان کے جو علی گڑھ والے جو لوگ تھے, ان کا تھا کہ جی عورتوں مردوں نے اور زیادہ عورتوں نے بھی جو ہے نا وہ انگریزی کی تعلیم حاصل کرنی ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ یعنی سائنس کی تعلیم حاصل کرنی ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے. تو یہ بات کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں شامل ہو کر کے نا, یہ جو یعنی جو مسلمان ہیں یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے, یہ انگریز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, بلکہ یہ انگریز کے غلام بن جائیں گے. کیوں غلام بن جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ جو اس تعلیمی نظام سے ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں نا, تو اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے ابھی, यानी इनका जो इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी लेवल है ये इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि ये इस तालीमी निजाम से के असरात से अपने आप को बचा सके। ठीक है, तो उन्होंने ना फिर क्या किया कि मुसलमान बच्चों को, मुसलमान नौजवानों को इस तालीमी निजाम से एक्सपोजर दे दिया, और तालीमी निजाम के जो बुरे असरात थे उससे वो मुसलमान नौजवान अपने आप को नहीं बचा सके। ठीक है, लेकिन ये एक फ्यूचर की बात थी जो कि इनको पता नहीं थी, इन्होंने सोचा नहीं इतनी गहराई में जा करके, इनके पास इतनी बसीरत नहीं थी, ठीक है, कि ये सोच सके कि भाई ये जो नौजवान है ये इस रेले में बह जाएंगे, ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे, ये बह जाएंगे इस रेले में। जबकि उलमाए कराम उनका एक बहुत ही डिफरेंट यानी उनके पास गहराई होती है ना बातों को देखने की, तो वो जानते थे कि बेशक काफिर से लड़ने के लिए काफिर के सिस्टम को सीखना ही वाजिब है। ठीक है, काफिर से लड़ने के लिए काफिर के सिस्टम को सीखना वाजिब है, लेकिन हर बंदा नहीं सीख करके लड़ सकता, बल्कि इसके लिए आपको पहले बंदे को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो खुद उसके सिस्टम के असरात से बच सके, फिर उसके बाद वो इस तालीम को हासिल करेगा तो वो मुकाबला करने के काबिल हो सकेगा। ठीक है, अदरवाइज वो मुकाबला क्या करेगा, वो तो खुद उनका शिकार हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये गोया के गलती थी जो कि सर सैयद अहमद खान साहब जो है उन्होंने कर ली, और उलमा इस गलती को भांप चुके थे कि ये चीज जो है ना बहुत महंगी पड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन खैरख्वाही और नीयत के ऊपर शुबा जो है ना वो उलमा ने इनके नहीं किया था, जहां तक मेरे मुताले के अंदर है, मेरी समझ के मुताबिक। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ ये कि जब ये यूनिवर्सिटी वगैरह एस्टैब्लिश हो ही गई, ठीक है, और इसके अंदर से जो है वो मतलब पढ़ पढ़ करके निकलना लोग शुरू हो गए, तो फिर हमारे उलमा ने जब देखा ना कि जी अब ये तो सिस्टम चल पड़ा है, तो फिर उन्होंने ये कोशिश करी कि ये जो नौजवान निकल रहे हैं ना, इन नौजवानों को दीन की तरफ लाने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस वजह से फिर हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाते थे, वहां जाकर के बयान करते थे, ताकि उन नौजवानों में जो बेदीनी के हालात बन चुके हैं तो उसको काउंटर किया जा सके, उनको दीन की तरफ लाया जा सके। ठीक है, जैसे कि आज हमारे मशायख और उलमा जो है वो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर जाकर के जो बयान करते हैं, तो बस इसी कोशिश में या इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत दीन की तरफ भी आ जाए तो गुमराही से बच जाएंगे, ईमान के जाए होने से बच जाएंगे, और इनकी कुछ सलाहियतें जो उन्होंने दुनियावी तर्ज तालीम से हासिल करी है तो वो जो है वो दीन के फायदे के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। अच्छा, एक और चीज थी, जैसे कल मैंने जरा काफी सख्त जुबान में ये बात कही थी कि जो मखलूत तालीमी निजाम के अंदर जाते हैं तो उनके अंदर जो हया होती है ना, वो हया जो होती है फिर वो यानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब वो जो खत्म हो जाने का मामला है, तो वो वैसे तो हम पहले भी कभी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वो जरूरी नहीं है कि 100% खत्म हो जाए। ठीक है ना, ये तो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा आपका एक्सपोजर हुआ है और कितना ज्यादा जो है ना वो आपका घर से जो है वो यानी जिसको कहते हैं घर का माहौल जो है वो कितना लूज था। ठीक है ना, तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि जी कितनी हया खत्म हुई। तो हर एक की 100% खत्म नहीं हो जाती, 100% खत्म तो फिर वो जो काफिर औरतें होती हैं फाहिशा, उनकी 100% खत्म होती होगी, लेकिन एक मुसलमान बच्ची जो कि इस मखलूत तालीमी निजाम में जाती है ना, तो उसकी खत्म होने के एक वेरियंग फैक्टर्स हैं। किसी की 10% खत्म होती है, ये हम समझाने के लिए परसेंटेज लगा रहे हैं, लेकिन बात समझाना है कि पूरी नहीं खत्म होती बल्कि जुजी खत्म होती है। किसी की 10% खत्म हुई, किसी की 20% खत्म हुई, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 70% खत्म हुई। ठीक है ना, और किसी के 80%, किसी के 90% खत्म हुए, राइट। तो इस तरीके से ना तदरीज यानी हर एक का मामला डिफरेंट होता है, हर एक के अपने अहवाल, हर एक के अपने एक्सपोजर्स के मुताबिक होता है। अच्छा, अब ये हया है क्या चीज? ये हया तो एक फितरी कैफियत है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को बना करके पैदा किया होता है, औरतों के अंदर ज्यादा डाली है, मर्दों के अंदर जो है ये गैरत से मगलूब होती है। ठीक है, तो ये चीज जो है फितरत में से कम हो जाती है, इस फितरत को मस्क किया जाता है माहौल के जरिए से, तालीमी निजाम के जरिए से। ठीक है ना, ये मुमकिन है फितरत को बदल देना। जैसे कि आपको याद होगा सूरह रोम की जो हमने आयात की तफसीर पढ़ी थी, इस पास में इसके अंदर तो नहीं था ना, इससे यानी मार्कुल कुरान की वॉल्यूम के अंदर, पिछली वाली वॉल्यूम ही थी ना, ला तब्दीला लिखल्कल्ला, ठीक है ना। तो वहां पर हमने बात पढ़ी थी ना कि इसका एक मफहूम ये भी है कि अल्लाह ताला ने जो फितरत बनाई है उसको, यानी कोई ऐसा काम ना करो कि ये फितरत मस हो जाए, ये फितरत तब्दील हो जाए, ठीक है ना। तो ये अमर के मानी में भी है, ला तब्दील लखल्क, ये है तो जुमला फेलिया लेकिन जुमला इंशाया के भी मानी निकलते हैं इससे। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऐसी किताबें पढ़ाएंगे, वो हजरत ने लिखा हुआ था तफसीर के अंदर कि अगर ऐसी किताबें पढ़ेंगे तो फितरत तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो फितरत जो है, जो कि अल्लाह ताला ने जीन्स में रख करके इंसान को पैदा किया होता है, वो तब्दील हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छी बात यह है कि अगर ये चीज तब्दील हो भी जाए ना, अब इसको वापस तब्दील करना जो है वो मुश्किल जरूर होता है, ठीक है ना। वापस फिक्स करना, इसको वापस सेट करना मुश्किल जरूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता, ठीक है। बचपन में फितरत को तब्दील कर देना आसान होता है, क्यों? इसलिए कि बच्चा जो होता है वो सॉफ्ट होता है बहुत, उसकी फितरत जो होती है वो, यानी वो उसका एक्सपोजर्स कम होते हैं, वो जो होता है एक कहते हैं ना जैसे यानी एक स्पंज की तरह से होता है, या एक जो है वो मोल्टन चीज की तरह से होता है, तो उसको आप जो है ना वो आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो वो सख्त हो जाता है। अब सख्त चीज को तो मोल्ड करना ज्यादा मुश्किल होता है ना, बल्कि तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से बड़े होने के बाद फितरत तब्दील होना या फितरत का वापस सेट कर देना उसके असल हालत के ऊपर, ये मुश्किल जरूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो अगर कोई इंसान बहुत मेहनत करे और अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगे ना कि अल्लाह मेरे अंदर से हया जो है वो अगर 70% कम हो गई है, या मेरी गैरत, मर्द ये दुआ मांगे कि मेरी गैरत अगर 80% खत्म हो गई है तो अल्लाह आप इसको ठीक करने के ऊपर कादिर हैं, आप इसको वापस से मुझे यानी लौटा दें, वापस जो है वो मेरे अंदर गैरत पैदा कर दें, वापस मेरे अंदर हया पैदा कर दें, और साथ साथ जो है वो उसकी दवा भी करे, यानी अस्बाब भी इख्तियार करे और नेक सोहबत भी इख्तियार करे, नेक बातें पढ़े, नेक बातें जो है वो करे और अल्लाह ताला का खूब कसरत के साथ जिक्र करे, तो ये फितरतें जो है वो इंसान की फिर वापस भी आ सकती हैं, ठीक है। तो जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो जमाने को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से जो है वो फितरत के जो जो हो चुकी है ना उसके साथ, तो उनको फिर किसी न किसी दर्जे में अंडू किया जा सकता है। तो नबी जमाने में उनको इजाजत थी और उनको मस्जिद में आने से रोकने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, अगरचे इस वक्त भी उस वक्त भी उनको तरगीब इसी की दी थी कि नमाज अपने घरों में अदा करें, क्योंकि उनके लिए मस्जिदों में आने से ज्यादा सवाब घर में पढ़ने का है, मगर फितने का खौफ ना होने की सबक मना नहीं फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबा कराम ने देखा कि अब औरतों का मस्जिदों में आना फितने से खाली नहीं रहा, अगरचे बुरका चादर वगैरह लपेट कर आए, ठीक है, यानी अगरचे के वो इन सब के साथ आ रही हैं बुरके वगैरह के साथ, लेकिन फिर भी वो फितने से खाली नहीं रहा। भाई पहले तो नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात वॉज द रीजन ना, आप सल्लम को देखना, आप सल्लम की आवाज सुनना, ठीक है ना, ये रीजन था मस्जिद में आने का। सवाब तो घर में ज्यादा मिल रहा था, ठीक है ना, जो कि मुतलकन सवाब, जिसको कहते हैं कि जी हिसाब किताब वाला जो मामला होता है सवाब का, तो मुतलकन सवाब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया, घर में मिलेगा तुम्हें, बल्कि घर के अंदर भी सहन में जितना सवाब मिलेगा उससे ज्यादा सवाब तुम्हें घर के उस कमरे में मिलेगा जो कि बिल्कुल ही अंदर का कमरा होता है, उसमें सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा। तो फिर मस्जिद क्यों आ रही है? मस्जिद आने का मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखना था, ठीक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं है, ठीक है ना, जरा गौर करें इस बात के ऊपर, जब नबी अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है और सवाब घर में मिल रहा है तो अब मस्जिद में आने की क्या रीजन है जी? अब मस्जिद में क्यों आ रही हो? सवाब भी घर में मिल रहा है, नबी अलैहिस्सलाम भी मस्जिद में मौजूद नहीं, अब क्यों आ रही हो? अब जो आना है तो इसकी फिर नियत ही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना, नियत ही गड़बड़ हो गई ना, कि भाई अब आप या घर से बस निकलने का शौक हो रहा है, घर से निकलने का शौक हो रहा है तो बस मुझे निकलना है, बस मुझे जाना है, अब कहीं और नहीं, कहीं और जाऊंगी तो मुझे जो है वो लोग बुरा बुरा भला कहेंगे, तो चलो मस्जिद चलते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे भी मामलात होने शुरू हो गए होंगे, हर एक के साथ नहीं हुए होंगे। सहाबा कराम की जो 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 यानी जनरेशन है, तो उसकी तो अल्लाह ताला ने रजा का वादा किया हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि जिसकी वजह से कुछ जो अकाबिर सहाबा थे उन्होंने मना किया, और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी ताईद करी। या तो कुछ नए लोग जो दाखिल हुए थे इस्लाम के अंदर, क्योंकि तबलीग का सिलसिला तो चल रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद भी, ठीक है, तो नए लोग भी तो आ रहे थे ना, अब उनको भी भाई हाँ भाई तो सहाबियात जो है मस्जिद में जाती हैं, जो हम भी मस्जिद में जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ऐसी कोई चीज शुरू हो गई होगी कि जिसकी वजह से क्या सहाबा कराम ने देखा कि अब औरतों का मस्जिदों में आना फितने से खाली नहीं रहा, ठीक है। तो भाई ये सिर्फ ये नहीं कि जी नऊज बिल्ला जो सहाबा थे वो सहाबा जो है उन्होंने लड़की औरतों को छेड़ना शुरू कर दिया था, नऊज बिल्ला ऐसा तो नहीं हुआ था ना, ठीक है। तो नए लोग जो जो दीन में आ रहे थे उनमें कुछ ऐसे लोग थे, कुछ गुलाम जो कि जैसे जैसे जिहाद बढ़ रहा था, इस्लामी सल्तनत की बाउंड्रीज बढ़ रही थी, ठीक है, तो काफरों के इलाकों पर कब्जा हो रहा था। तो जब काफरों के इलाकों पर कब्जा होता है तो उनके मर्द जो है वो गुलाम बनते हैं, और गुलाम बन करके उनमें से बहुत से जो है वो मदीना मुनव्वरा भी आ रहे होंगे, ठीक है ना। अब वो गुलाम जो थे तो वो तो मुसलमान नहीं थे ना, वो मुसलमानों के गुलाम थे, और उन्होंने फिर जो है वो यानी ऐसे ऐसे भी थे उनके अंदर कि जिन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, गुलाम ही था ना वो इसी तरीके का, लूलू फिरोज जिसका नाम था। मुनाफिकीन की वजह से भी, मुनाफिकीन तो डेफिनेटली मुनाफिकीन पहले भी थे और मुनाफिकीन अभी भी, खत्म तो टोटली नहीं हो गए थे, ठीक है, लेकिन अब जो है ना वो नए मुनाफिकीन भी दाखिल हो रहे थे, ठीक है ना, यानी नए लोग भी जो है ना वो आ रहे थे कि जी इस्लाम को हमने खत्म करना है, तो अब किसी ना किसी तरीके से वो इस चक्कर में रहते थे। तो ओवरऑल जो है ना वो सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि जो अकाबे साहब अकराम थे उन्होंने यही बेहतर समझा कि औरतों को जो है वो घर के अंदर ही नमाज पढ़ने की तरकीन की जाए। तो इन हजरात ने बेजमा व इत्तेफाक औरतों को मस्जिदों की जमात में आने से रोक दिया। हजरत सिद्दीका आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के हालात को देखते तो जरूर औरतों को मस्जिदों में आने से रोक देते। इससे मालूम हुआ कि सहाबे कराम का फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शराइत की बिना पर इजाजत दी थी अब वो शराइत ना रही तो हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के फैसले से बदल गया, ठीक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जो कहा था तो वो मशरूत चीज थी। जब मशरूत यानी मशरूत चीज जो होती है वो शर्तों के साथ होती है, जब शर्तें बदल गई तो फिर हुक्म भी बदल जाएगा, यानी इल्लत इल्लत की वजह से कोई चीज हराम होती है या कोई चीज हलाल होती है, जब इल्लत तब्दील हो गई तो हुक्म भी तब्दील हो जाता है। तो इस वजह से ये बात जो अवाम के अंदर मशहूर है कि नाऊज बिल्ला सहाबा कराम ने जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के फैसले को चेंज कर दिया, नबी अलैहिस्सलाम की मर्जी मंशा के खिलाफ बात कर दी, ये बेवकूफी और कम इल्मी की वजह से ऐसी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जरा सी तफसील को अगर देख लें, कुछ एग्जाम्पल से अगर उनको बात समझाई जाए कि भाई इल्लत की वजह से हुक्म होता है और इल्लत के तब्दील होने से हुक्म तब्दील हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि इसमें कोई नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत का पहलू ही नहीं है इसके अंदर। आजकल के जमाने में मेजोरिटी औरतें बापर्दा तो बेपर्दा, तो पर्दे वाली औरतें भी फितने की वजह बन सकती हैं, पर्दे वाली औरतें फितने की वजह बन सकती हैं, नहीं इसके अंदर जो है ना वो यानी ये भी एक ओपिनियन कुछ लोगों में है, ठीक है, वो ओपिनियन जो है वो स्पेशली जो यानी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो लोग जाते हैं तो उनमें ये ओपिनियन है कि जी पर्दा करोगे तो फितने का सबब बनोगे, ठीक है, क्योंकि सारी औरतें जो है वो बेपर्दा होती हैं और मुसलमान औरत जो है वो बुरके में होती है तो फिर तो वो यानी बिल्कुल ही ज्यादा मुमताज हो जाती है वगैरह, ठीक है। तो इसका जवाब ये होगा कि ये जो है ना कि फितने का सबब, ठीक है, तो फितना जो है ना इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू यू कॉल फितना, ठीक है, तो फितना की डेफिनेशन भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि जी आप जिस चीज को फितना समझते हैं वो फितना है, या जिस चीज को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना डिफाइन किया है वो फितना है, ठीक है। फितना जो है ना, उसकी डेफिनेशन हमें अल्लाह और उसके रसूल से लेनी होगी कि ये फितना है। जिस चीज को हम फितना समझते हैं वो फितना नहीं है। हम फितना किस चीज को समझते हैं, हमें कुछ तकलीफ पहुंच जाएगी, ठीक है ना, हमें कुछ जो है वो जहनी अजियत हो जाएगी, या हमें कोई फिजिकल तकलीफ भी पहुंच सकती है, हमारे हमारे नजदीक ये फितना है, ठीक है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक फितना जो है ना, वो ये चीजें तो शामिल होती हैं उसके अंदर, ठीक है ना, जहनी अजियत और जिस्मानी अजियत, लेकिन इससे बढ़कर के फितने के अंदर जो शामिल है चीजें, वो दीन से दूरी और आखिरत का अजाब, आखिरत की सजा, ठीक है ना, ये फितने के अंदर ये चीजें भी शामिल हैं, और इनकी इंपॉर्टेंस, इनका वेटेज जो है ना वो ज्यादा है, ठीक है। तो फितने का बायस बनना आखिरत के अजाब का बायस बनना, ठीक है ना, आखिरत के सजा का बायस बनना, और उसके बाद दुनिया के अंदर की दुनिया की तकलीफ का बायस बनना, ये लोअर यानी सिग्निफिकेंस है इसकी, ठीक है। तो अब अगर एक मुसलमान औरत किसी ऐसी जगह पर जाती है जहां पर के सारे बेपर्दे हैं, तो अब अगर वो अपना पर्दा रिलैक्स कर देती है ना, यानी अपने आप अपने जिस्म के हिस्सों को दिखा देती है, ठीक है ना, जिसको कि सतर कहते हैं, सतर को एक्सपोज कर देती है, ठीक है। तो सतर को एक्सपोज करने से ये जो उसका अमल है, ये उसके लिए दुनियावी तौर पर तो शायद थोड़े से कम फितने का बायस बने, थोड़े से कम फितने का, ठीक है, लेकिन आखिरत के नुक्ते नजर से ये उसके लिए बड़े फितने का बायस बन जाएगा, ठीक है। इसलिए कि सतर को छुपाना जो है वो फर्ज है, ठीक है, और अगर वो फर्ज को रिलैक्स कर देती है वहां पर जाकर के, फर्ज को छोड़ देती है, तो इससे जो है ना वो यानी उसके लिए इसमें खैर नहीं है, बल्कि उसके लिए इसमें जो है वो शर ही है। बाकी ये कि अब जो है वो थोड़ा अकली तौर पर अगर इन चीजों को जरा देख लें, और जो जो ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा जो है, मुशाहिदे के तौर पर भी अगर देखें ना, तो फिर हकीकत तो ये है कि जी यानी एक वेस्टर्न कंट्री के अंदर, या इवन इंडिया में भी जो हालात जैसे आप लोग बताते हैं जो है, तो वहां पर भी जो है ना ये पर्दे को यानी पर्दा के करने से कोई ऐसा नहीं हो रहा होता है कि जी औरतों को जो है वो मारना पीटना शुरू कर देते। ये जो वाकयात हैं किसी मुसलमान यानी पता लग जाता है कि ये औरत मुसलमान है, ये जो है ना इस्लाम की वजह से कुछ ना कुछ अपने आप को कवर कर रही है। तो इस वजह से ना उलमाए कराम जो है वो इसके हक में नहीं है कि जी वहां पे जाकर के जो अपना बुर्का उतार दो, और वहां पे जाकर के निकाब करना छोड़ दो। और भाई मुशाहिदा यही है कि पहले तो चलो फिर भी जरा मुश्किल होती थी, अब तो और भी ज्यादा जो है ना ये वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो मुसलमानों के कल्चर के लिए और काफी ज्यादा जो है ना ये यानी एक्सेप्टेबल हो गया है ये आउटवर्ड इस्लाम वहां पर, हत्ता कि अब तो दाढ़ी भी जो है वो बहुत ज्यादा कल्चर का हिस्सा बन चुकी है, शरी दाढ़ी भी। बहरहाल इसके ऊपर जो जो इल्लत है पर्दे के ऊपर, ये इल्लत जो है ना इसकी ये नहीं है कि जी दुनिया के फितने से बच जाना, बल्कि ये एक अल्लाह ताला का हुक्म है। इस अल्लाह ताला के हुक्म को जो है वो अब दुनिया के हालात और वाकयात की वजह से चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो फर्ज है वो फर्ज है, पांच नमाजों को घटा करके चार नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि जी वहां पर जो है नमाजें पढ़ना मुश्किल है, लोग आपको ताने देंगे, लोग आपको छेड़ेंगे, या लोग आपको, तो इस वजह से जो है वो मैं जो दफ्तर में होता है टाइम, उस टाइम में मैं नमाजें नहीं पढ़ूंगा, मैं सारी नमाजें घर आके पढ़ लूंगा। जैसे बहुत सारे मुसलमान जो कि बड़ा जिनका कमजोर दीन था हमारे जैसा, राइट, तो जब अमेरिका गए जॉब वॉब करने के लिए, यूरोप गए, तो क्या उन्होंने हल निकाला इसका, वो पांचों नमाजें जो है वो एक वक्त में पढ़ते हैं। पहले तो कम से कम बहुत सारे लोग ऐसा करते थे, हत्ता के जुमे की नमाज जो है वो हफ्ते के दिन पढ़ रहे होते थे। ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पे हमें लोगों ने बताया कि यहाँ जुमा जो है ना वो हफ्ते के दिन होता था, क्योंकि हफ्ते को छुट्टी होती है। अब जुमा कैसे पढ़ने के लिए जाए भाई, जुमा कैसे पढ़े। खैर जुमा तो दूसरी बात है, उसके तो रिलैक्सेशन की शरीयत के अंदर वो भी है, लेकिन नमाजें नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे जी, लोग क्या कहेंगे, जगह नहीं है पढ़ने के लिए, लोग ऐसा, इस तरह की बात है। तो भाई ये जो फराइज हैं, इन फराइज को नहीं हालात की वजह से रिलैक्स किया जा सकता। आपको कहा किसने था कि आप जाकर के वहां पे रहना शुरू हो जाए, आप अपनी मर्जी से गए थे ना, अब ही इतना बड़ा गुनाह किया, उसके ऊपर मजीद गुनाह कराएंगे। मैंने देखा ऐसे लोगों को, अनफॉर्चुनेटली यहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ पर जो अब तो खैर यहाँ पर भी रिलैक्स हो गया, लेकिन पहले यहाँ से जो बुरके में जाते थे और वहां जाते के साथ ही इमिग्रेशन में पहुंचे, सारा का सारा उतर गया। ठीक है, अब मेरी बेगम ने बताया कि ये तो वही औरत जा रही थी जो कि अभी बुरके में थी, अभी क्या हो गया उसको। ठीक है, अमेरिका के एयरपोर्ट पर जाकर के सब कुछ उतर गया। तो ये एक यानी इंसान की अपनी कैफियत होती है जिसकी वजह से ना वो यानी बहाने बना रहा होता है कि जी ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो तजुर्बा ये रहा है कि अल्लाह का शुक्र है आसानियां ही उठाती हैं, बल्कि उल्टा। खैर, तो फितने की डेफिनेशन के ऊपर जरा हमें फोकस करनी होगी कि किस चीज को हम फितना समझते हैं। हजरत सिद्दीक आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अगर रसूल सल्लम आज के हालात को देखते तो ठीक है, तो औरतों के पर्दे का बयान कुरान करीम की 7 आयतों में आया है, 3 सूरह नूर में गुजर चुकी हैं, 4 आयतें सूरह अहजाब में हैं जिनमें से एक पहले आ चुकी है, एक जेर नजर है, बाकी आगे आएंगी, जिनमें पर्दे के दर्जात की तयीन और अहकाम की तफसील और जो इससे मुस्तस्ना है उनका मुफस्सल बयान है। इसी तरह 70 से ज्यादा अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौलन और अमलन पर्दे के अहकाम बतलाए गए हैं। इन सब को यकजा मालूम करने के लिए अहकर ने एक मुस्तकिल रिसाला बनाम तफसीलुल खिताब फी तफसीरी आयातिल हिजाब लिख दिया है, जो बज़ुबान अरबी अहकामुल कुरान सूरह अहज़ाब का जुज होकर शाया हो चुका है। इस तफसीर कुरान में हर आयत की तफसीर तो अपनी अपनी जगह पर आती है, बाकी मजामीन रिसाले के चंद जरूरी इक्तबासात यहाँ लिखे जाते हैं। नुज़ूल हिजाब की तारीख, ये हम अगली क्लास के ऊपर रखते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो अभी पूछ लें, अदरवाइज जो क्योंकि 1 घंटा ही क्लास को देना था और बाकी अभी बहुत सारे काम है सर करने के लिए सफर के लिए, तो मैं मजीद स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, काफी देर हो जाएगी। वैसे जो भी है ये जो फितने की शक्ल बन रही है, नहीं बन रही है, करना क्या चाहिए वगैरह, तो इन सब के अंदर फिर वही बात आई होती है कि अपने जाती अहवाल को जो है वो शेख के सामने रखना चाहिए और उनसे पूछ लेना चाहिए कि मैं इन अहवाल के अंदर क्या तरीका अख्तियार करूं। इससे फिर इंसान के अपने ऊपर जो बोझ होता है ना, वो बोझ भी जो है कम हो जाता है और वो एक अनबायस ओपिनियन जो है वो आपको दे देता है, जो कि दीन की ही रोशनी में होता है। पर्दे में रहकर भी खराबी हो सकती है। हाँ जी, पर्दे में रह के क्यों नहीं खराबी हो सकती, ये तो बड़ा, बल्कि जो बेपर्दा होती हैं तो वो तो और ज्यादा इस बात को बयान करती है कि ये देखो इनके इनके चाल चलन देखो और ये जो है वो फुल बुरके में रहती है। ठीक है, तो खराबी तो फिर हर जगह हो सकती है। हाँ, यानी बात वही है कि जी अगर दिल खराब हो तो फिर तो जाहरी तौर तो पर कोई चीज पर इंसान को बचा नहीं सकती, लेकिन ये पर्दे वगैरह जो हैं ये असबाब के दर्जे में अल्लाह ताला ने हमें काम दिए हैं, तो ये भी दीन का हिस्सा है, तो इनको खत्म नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है, ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि दिल खराब है तो इस वजह से पर्दा करना भी छोड़ दो, नमाज पढ़ना भी छोड़ दो, तुम्हें क्या मिलेगा इस नमाज से। भाई वो जो शायर, वो जो शेर व शायरी है ना कि तेरा तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज से, तो इस शेर का एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है ना कि नमाज पढ़ना छोड़ दो क्योंकि मेरा दिल सनम आशना है, तो फिर तो कोई मुसलमान नमाज पढ़ेगा ही नहीं, राइट? क्योंकि सबका ही दिल माशाल्लाह नाउजुबिल्लाह जो है वो सनम आशना है। ठीक है, तो ये तो शेर व शायरी की हद तक बात होती है ना, बंदे को जरा अंगेख्ता करने के लिए, भरअंगेख्ता करने के लिए बातें की जा रही होती है, जरा अपने दिल की सनम आशनाई को कम करो, ये नहीं कि नमाज छोड़ दो। बिल्कुल इसी तरीके से पर्दे में रह करके सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पर्दे को छोड़ दो, बल्कि अपने दिल को ठीक करो, अपने हालात को ठीक करो। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।